शांति। ये संगम युग में बाबा ने जो विभिन्न सौभाग्य दिए हैं उसमें एक स्पेशल भाग्य है और वह है अपने मम्मा बाबा दादियों के संग उनकी पालना का मिलना। ये हम सब का परम सौभाग्य है और मैं सोचती हूं कि इस भाग्य को इस आत्मा ने भरपूर रूप से पाया भी है और उसका लाभ भी लिया है। आदरणीय दादी जी के साथ प्रथम मुलाकात जब शायद मेरी आयु इस शरीर की 9 वर्ष की 8.5 वर्ष की रही होगी तब हुई थी और वो भी 1958 में जब बाबा ने बाल भवन बनवाया था कानपुर में और मम्मा बाबा दोनों ही आए थे। उस समय आदरणीय दादी जी की लौकिक माँ वे वहां रहती थी और दादी जी भी थे, अन्य भी बड़ी बड़ी दादियां थी। उस समय आपको दृश्य अगर बताऊं तो एक वक्त पर एक संदेशी नहीं जाती थी भोग लेकर के, कई संदेशियां, जितनी संदेशियां होती थी सब बैठ जाती थी भोग लेकर के और सब बाबा को भोग स्वीकार कराती थी। वो भी अपने आप में एक दृश्य था। फिर जब स्पेशली बेंगलोर में गए अपनी शिक्षा अर्थ, तो बेंगलोर में प्रदर्शनी आदि लगती थी तो जो पहली प्रदर्शनी हुई उसमें दादी जी का आना हुआ था। तब दादी जी की नजर पड़ी कि इस कन्या को आगे बढ़ाना है। मैं इंग्लिश में सारी प्रदर्शनी एक्सप्लेन कर रही थी और उन दिनों बहुत बहुत कम बहनें होती थीं जो इंग्लिश बोलती थीं, तो दादी जी का बाबा के फरमान अनुसार एक विशेष आज्ञा का जो संस्कार था, आज्ञा पालन का, दादी जब भी प्रदर्शनी होती थी गाइड्स होते थे तो दादी राउंड लगा करके सारे प्रदर्शनी में सब सुनती थी गाइड्स क्या समझा रहे हैं और रात को मीटिंग करती थी कि कहां कहां पर क्या क्या करेक्शन है। ये दादी जैसे कि हम सबको बचपन से सिखलाती रही कि किस तरीके से समझाना चाहिए, क्या बात समझानी चाहिए आदि आदि। फिर तो दादी की नजरों में आने से मुझे पहली ट्रेनिंग जो हुई वो उसमें मुझे सम्मिलित किया गया। हालांकि मुझे आगे पढ़ना था और 69 की ये बात है, पहला ग्रुप ट्रेनिंग का जिसमें कि कॉलेज गोइंग कन्याएं थीं, हम सब यूनिवर्सिटी की बच्चियां थीं, लेकिन कईयों ने तो अपना पढ़ाई का संकल्प संपन्न कर लिया था, लेकिन साकार बाबा ने लौकिक पिता को कहा था कि बच्ची को अच्छी तरह से पढ़ाना है और इंग्लिश पढ़ाना है, तो मेरे मन में कोई संकल्प नहीं था कि मैं ट्रेनिंग के बाद समर्पित हो जाऊं या सेवा में लग जाऊं। मैं आगे पढ़ना भी चाहती थी, परंतु फिर भी दादी दीदी तो पारखी बुद्धि है, उन्होंने फिर भी सिलेक्ट किया ट्रेनिंग में, और ट्रेनिंग हमने 69 की। और दादी ने उस ट्रेनिंग में, कन्याओं की ट्रेनिंग में, मेरे को मॉनिटर बना दिया। क्यों मॉनिटर बनाया, इसका राज मैं बाद में समझी, बहुत बाद में, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के ऊपर जिम्मेवारी दी जाती है तो वो बंद सा जाता है। तो मैंने देखा कि उस रोल में जो दादी ने मुझे बांधा, उससे मैं ऐसी बंध गई जो कि कभी छूट नहीं पाई। जिम्मेवारी बहुत कुछ सिखा देती है, कई टेढ़े बांके संस्कार ठीक कर देती है। कभी सवेरे अमृत वेले उठती नहीं थी, लेकिन जब मॉनिटर बने तो सबसे पहले खुद को उठना है, रिकॉर्ड बजाना है। कभी कोई ऐसे काम नहीं किए थे तो मॉनिटर के नाते सबसे पहले आपको करना है। ये सब संस्कार, मैं कहूंगी आदरणीय दादी जी ने उस काल में उसके बीज बो दिए, जो कि आज दिन तक उनको मैं संजो के रखे हूं और उनको यूज भी करती हूं। दादी की इतनी पावन दृष्टि होती थी, शक्तिशाली होती थी, आप सच पूछें तो हमें तो ये भी नहीं पता था कि पावन दृष्टि क्या है, शक्तिशाली दृष्टि क्या है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे दादी की दृष्टि बहुत अच्छी लगती थी। जब दादी कहते थे सौगात, आशा सौगात क्या लोगी, मधुबन आते थे तो दादी कहते थे क्या सौगात लोगी, तो मैं कहती दादी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी दृष्टि चाहिए। दादी प्रेम से दृष्टि देते थे, लेकिन दादी ज्ञानवान थी, ज्ञानी तो आत्मा थी। दादी कभी नहीं चाहती थी कि किसी के अंदर ऐसे संस्कार हों जो किसी के ऊपर आधारित हो जाए। एक दिन दादी ने मुझे दृष्टि तो दी, लेकिन साथ साथ एक सेंटेंस बोला, आशा तुम भगत है क्या? मैंने तुरंत कहा नहीं, मैंने कहा दादी मैं भगत नहीं हूं, मैं ज्ञानी तु आत्मा हूं। बस इतना ही दादी ने कहा था और मैंने समझ लिया कि दादी मुझे किस दिशा में ले जाना चाहती है। फिर मैंने ये डिमांड कि आप मुझे दृष्टि दें, ऐसी डिमांड मैंने कदापि नहीं की। तो कहने का भाव ये है कि दादी के अंदर वे संस्कार थे बाबा के दिए हुए, हर आत्मा को ज्ञानी तो आत्मा की स्टेज पर खड़ा करती थी। मुझे याद है जब हम लोग ने ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग में सब कुमारियां थे हमारी, शिलू बहन, आरती बहन, चंद्रिका बहन, मुन्नी बहन, ये सब हम लोग एक ही ट्रेनिंग के हैं। और उस ट्रेनिंग में दादी तो स्वयं मुरली सुनाते थे, लेकिन दादी मुरली रिवाइज भी खुद कराते थे। और दादी हमारी क्लास के दो भाग बना देते थे, एक साइड से एक पॉइंट और दूसरे साइड से दूसरी पॉइंट। और कभी कभी दादी मुरली में पॉइंट कहां से शुरू हुई, दादी कहते थे वो ढूंढो, तो हम सब का जो पढ़ाई का संस्कार है, आज दिन तक भी मुझे याद आता है 73 में दिल्ली में बहुत बड़ा रामलीला ग्राउंड में मेला हुआ और दादी डेढ़ मास दिल्ली पांडव भवन में थी। हम लोग पांडव भवन में रहते थे तो हम देखते थे, हम लोग तो सवेरे तैयार होके कामकाज करके अपना हम लोग मैदान में चले जाते थे, मुरली हमारी मिस हो जाती थी। परंतु जाने से पहले जब हम दादी से छुट्टी लेते थे तो हम क्या देखते थे कि दादी मुरली पढ़ रही है। लेटेस्ट मधुबन से जो प्रश्न उत्तर आते थे दादी वे पढ़ती थी और हम लोगों को भी सुनाती थी। दादी ने एक दिन पूछ लिया हमसे, आप लोग मुरली कब पढ़ते हो? हमने कहा दादी हम सवेरे चले जाते हैं, मुरली हमारी मिस हो जाती है, शाम को देरी से रात को लौटते, नवंबर का महीना था, ठंड होती है, हम सो जाते हैं। दादी ने कहा नहीं, आज के बाद मुरली मिस नहीं होगी। और सच में ऐसे तो मिस नहीं करते थे, लेकिन सब मुरलियां इकट्ठी कर लेते थे और इकट्ठी करके पढ़ लेते थे। दादी ने कहा नहीं, रोज मुरली पढ़ो और फिर जाओ। तो जो पढ़ाई के संस्कार हैं, स्पेशली भाई बहनों को भी दादी कहते थे, मधुबन में कोई मीटिंग होती थी और मीटिंग में एजेंडा हमारा कंप्लीट नहीं होता था, हम लोग सोचते थे और तो सारा दिन टाइम नहीं है, क्या हम क्लास के टाइम पर मीटिंग कर सकते हैं? तो दादी जी हमेशा हमें ना बोलते थे, कभी भी दादी क्लास के टाइम पर छुट्टी नहीं देते थे कि आप जाओ और मीटिंग करो। कहने का भाव ये है, दादी स्वयं ज्ञान की सरिता और दादी हम सब से यही चाहती थी कि हम लोग मुरली पढ़ाई अपनी कदापि भी मिस ना करें। मैं क्लास से पूछती हूँ, इतने हमारी क्लास में कितने रतन हैं जो कभी भी मुरली मिस नहीं करते, वो हाथ खड़े करो। कभी भी नहीं करते, एक भी मुरली मिस नहीं करते, वो हाथ खड़े करो, हिलाओ तो पता लगेगा। लेकिन जिनके हाथ ऊपर नहीं है, जिनके हाथ ऊपर नहीं है, मैं चाहूंगी आप आए हैं दादी जी के स्मृति दिवस पर, इस बार ये संकल्प लेकर के जाएं, कुछ भी हो जाए परंतु हम मुरली मिस नहीं करेंगे। पक्का वायदा? जो कहे पक्का वायदा, पक्का वायदा। फिर एक बात और बताती हूँ, कई लोग कहते हैं बहन जी हम इंटरनेट से सुन लेते हैं, बहन जी टीवी पर आती है ना वो सुन लेते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, आपको टीवी से दृष्टि मिलती है, इंटरनेट से दृष्टि मिलती है, इंटरनेट से भोग मिलता है, भोग खाने को मिलता है, बताओ तो, मिलता है? अच्छा, इंटरनेट से आपको टोली मिलती है, मिलती है? इंटरनेट से ब्राह्मणों का संघ परिवार मिलता है? कुछ नहीं। इसलिए बाबा ने सिस्टम बनाया है क्लास में जाकर के मुरली सुनने का, और ये हमारा भाग्य है। सत्युग में भी तो हम पढ़ने जाएंगे, पढ़ने जाएंगे तो संस्कार तो अभी भरने पड़ेंगे ना, इसलिए पढ़ाई का अपना ये संस्कार हमको पक्का करना है। जब दादी कभी नहीं मुरली मिस करती थी, आपको पता हो जब दादी की तबीयत एक बार खराब थी, मुन्नी बहन ने कहा दादी आज क्लास में नहीं जाओ। आप जानते हैं दादी ने क्या कहा, मुन्नी तुम मुझको क्लास में जाने से नहीं रोक सकती हो, और दादी व्हील चेयर से भी क्लास में आए। ये थी हमारी दादी की पढ़ाई की लगन सच, जिसने इतना अपने आप को पढ़ाई से संवारा, हम पीछे क्यों रहे? ठीक है, इसी साथ साथ जब मैं समर्पण करने जा रही थी 1972 में, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की, कॉलेज में जॉब किया, पढ़ाया, दादी को हालांकि पसंद नहीं था, परंतु हमारे लौकिक पिता का बहुत ज्यादा प्रेशर था और लौकिक पिता को संतुष्ट करने के लिए ही मैंने जॉब किया था। यूनिवर्सिटी में पर चांस टॉपर रही, गोल्ड मेडलिस्ट रही, उससे भी डिमांड बहुत थी। तो दादी जी को मैंने वायदा किया था, दादी एक साल केवल, पिताजी को भी वायदा किया था, क्योंकि पिता ये देखना चाहते थे कि आशा के हाथ में पैसा आता है तो पैसे से ये कहीं आकर्षित तो नहीं होती है। ये उनकी एक परीक्षा थी जो पिता मेरी लेना चाहते थे। तो उन्होंने जब पाया और मुझसे कहा केवल एक वर्ष, तो जब उन्होंने देखा कि मेरी कोई अटैचमेंट पैसे से इतनी नहीं है, तो उन्होंने भी खुशी से छुट्टी दी, बाबा ने छुट्टी दी और दादी ने। दादी ने जब मैं समर्पण के लिए जा रही थी, जॉब छोड़ा, तो मैंने दादी को एक सवाल किया। मैंने कहा दादी, जितना काम अभी सेंटर पर होता है ये मैं जॉब करते भी आराम से कर सकती हूं, लेकिन अगर आप मुझे इतना बिजी रख सकते हैं कि मुझे लगे कि दिन में 24 घंटे की जगह 26 घंटे होने चाहिए, तब मैं समर्पण करूंगी। और क्योंकि मुरली सुनाना, क्लास कराना, कोर्स कराने कोई बड़ी बात नहीं है, मैं डबल काम कर सकती हूं। दादी के मन में ये बात बस गई। और जब दादी मुझे मिलते थे, पूछते थे क्या तुम बिजी हो, और मैं आपको क्या बताऊं, इतना बिजी कर दिया जो अब मैं चाहती हूं कि मुझे पर्सनल अपने लिए थोड़ा सा समय मिले, वो भी मिल नहीं पाता। दादी ने राह दिखाई, कैसे, बहुत सुंदर, क्योंकि दादी देवता धर्म की प्रमुख आत्मा, दादी के अंदर जो संस्कार थे होलिस्टिक, वो दादी पास ऑन कर रही थी। दादी ने मुझे कहा, आशा अगर कोई दिन ऐसी सेवा नहीं होती, ज्ञान सुनाने की, क्लास कराने की आदि, तो तुम किचन में जाओ, भंडारे में जाओ और भंडारे में जाके सेवा करो। मुझे इतना अच्छा लगा कि बाबा का भंडारा, और अगर हम वहां सेवा करेंगे तो अपने संस्कार यज्ञ के बनेंगे। एक अपनापन, दादी ने एक बात और कही, अगर यज्ञ में रहते हैं, कोई ना कोई विशेष ड्यूटी घर की करते हैं, घर की ड्यूटी अर्थात चाहे सफाई की करो, चाहे रोटी की करो, चाहे कुछ भी करो, यज्ञ की कोई घरेलू ड्यूटी करते हैं, तो वो घर आपको, यज्ञ आपको अपना लगता है। अपनत्व का जो भाव था वो दादी ने इन संस्कारों के द्वारा डाला। फिर हम देखते थे, दादी तो भाई दादी थी, कमाल की, अकेले चल पड़ती थी, दादी के साथ कोई हो या ना हो, लेकिन ऐसी दादी की अथॉरिटी, इतना जलवा, कभी देखो तो भंडारे में चक्कर लगा रही है, कभी देखो तो ऑफिस की तरफ गई है, कभी देखो तो अकोमोडेशन की तरफ जा रही है। कमाल थी। और सब चीज दादी को सफाई इतनी पसंद थी, जो दादी बैठती थी चलते चलते जरा से ऐसा हाथ करके देख लेती थी, जरा सी धूल लग गई तो दादी इशारा देके जाती थी। हर प्रकार से दादी के अंदर संस्कार थे जो दादी ने हम बहनों के अंदर पास ऑन किए। इसी रीत से यह भी भाग्य है जो मुझे दादी के साथ बहुत नजदीक रह करके कार्य करने का मौका मिला है। और वो क्या होता था, आप सब जानते हैं, कन्याओं की ट्रेनिंग मधुबन में दो दो महीना हुआ करती थी। एक एक महीना, डेढ़ डेढ़ महीना ट्रेनिंग होती थी। दादी रतन मोहिनी जी के साथ उनको असिस्ट करने के लिए, चंद्रमणि दादी जी को असिस्ट करने के लिए मेरा भाग्य था, अभी भी है। लेकिन जब हम लोग बैठते थे डिसाइड करने के लिए कौन सी कन्या को कहां भेजना है, तो मैं देखती थी उसमें दादी स्वयं बैठते थे और एक एक आत्मा, एक एक कन्या, आज शायद उन टीचर्स को भी नहीं पता जो भारत के हजारों सेंटर्स पर ट्रेनिंग से गई हुई कन्याएं हैं, उन्हें भी नहीं पता कि दादी ने उन्हें किस दृष्टि से, क्या समझकर उस स्थान पर भेजा है। दादी हर एक की उन्नति कैसे हो, हर कन्या की प्रगति कैसे हो, इसको ध्यान पर रखकर उनको सेवा में भेजती थी। और अगर किसी कन्या ने कोई गलती भी की है, मैं देखती थी दादी इतनी रहम की सागर होकर के उससे बातचीत करके उसको दृष्टि देते देते करुणा की, क्षमा की और शक्ति की, कहती थी बस आज के बाद आपका नया जीवन। और सच में कन्याओं में वो उमंग और उत्साह भर जाता था। दादी को कन्याएं बहुत प्रिय थीं। उन्हें होवनहार शिव शक्तियों के रूप से देखती थी। कन्याओं के साथ बिल्कुल छोटी कन्या के रूप से दादी हो जाती थी। हमारी एक बस हुआ करती थी बहुत पुरानी, तब नई बस नहीं आई थी, वो बस झूलती थी, तो उस बस में हम लोगों को ऊपर से लेके नीचे, और तो कोई पिकनिक स्थान नहीं होता था, संगम भवन में, और रास्ते भर दादी सब कन्याओं को बहलाते हुए गीत गाते हुए लेके आती। तो दादी के संस्कार हमने देखे, छोटे के साथ छोटा बन जाना, बड़े के साथ बड़ा बन जाना, ये दादी की फ्लेक्सिबिलिटी, सादगी, नम्रता और दिल की सच्चाई और सफाई, प्यूरिटी उसकी निशानी थी। ऐसा व्यक्ति ही मोल्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है। जिसके अंदर ये संस्कार नहीं, वो टाइट रहता है और टूटता है। परंतु दादी के अंदर इतने अच्छे ये संस्कार थे जो मैं आपको क्या सुनाऊं। इसी रीत से आप लोगों को याद होगा जो पुराने भाई बहने बैठे हैं कि कॉल ऑफ टाइम एक डायलॉग हुआ करता था। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो अपने देश के राष्ट्रपति थे, पहले डीआरडीओ में थे, तो उन्होंने सामने बैठकर 3 घंटा स्ट्रेस मैनेजमेंट पर सुना था और उसके बाद फिर उन्होंने नजदीक आना शुरू किया। आते आते हम उन्हें पहली बार कॉल ऑफ टाइम डायलॉग में लेके आए, जिसमें 30-40 लोग थे, इंटरनेशनल लेवल के थे। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम तो साइंटिस्ट A1, ज्ञान सरोवर में डायलॉग चल रहा था, राउंड में सब बैठे थे। कैसे दादी हैंडल करती है VIPs को? डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से डायरेक्टली बोला दादी ने, साइंटिस्ट, साइंस बड़ी या साइलेंस? और डॉक्टर अब्दुल कलाम बोले, बिल्कुल टाइट होके, इधर उधर नहीं देखा, सामने देखते हुए सीधे बोले, साइंस। साइंटिस्ट थे तो बोले साइंस। उसके बाद दादी ने फिर रिपीट किया, डॉक्टर, साइंस बड़ी या साइलेंस? वे फिर बोले, साइंस। दादी ने तीसरी बार कहा, साइंस या साइलेंस? अब डॉक्टर अब्दुल कलाम चुप हो गए और कुछ नहीं बोले। कई महीनों के बाद, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से वार्तालाप हम लोगों की टेलीफोन के द्वारा बहुत होती है, वो पूरी बहुत लंबी कहानी है, वो मैं नहीं सुनाऊंगी, वो अपने आप में एक पूरी गाथा है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की स्टोरी। लेकिन बहुत समय के बाद बोले कि आपकी पहली संस्था है जिसमें मैंने जाना कि साइलेंस का इतना महत्व होता है। दादी ने डॉक्टर अब्दुल कलाम पर ऐसी छाप छोड़ी जो अब्दुल कलाम जी जब कभी हम मिलते थे, एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेलीफोन से मैं बात करती थी उनसे, तो बाबा के दो वचन उनको सुनाने के बाद उनका पहला प्रश्न होता था, दादी जी कैसे हैं? आप में से बहुतों को पता है या नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाते दादी जी का जब स्वास्थ्य ठीक नहीं था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाते डॉक्टर अब्दुल कलाम दादी जी को देखने के लिए आए माउंट आबू, खास दादी को देखने के लिए आए। ये विशेषता थी, दादी के साथ ऐसे बैठ के बातचीत की। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाते जब उन्होंने शरीर छोड़ा दादी ने, तो भी डॉक्टर अब्दुल कलाम का आना दिल्ली में हुआ। अब्दुल कलाम जी 5-6 बार एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी संस्था में आए थे। उनके साथ बहुत गहरा संबंध हम लोगों का रहा, बहुत गहरा संबंध रहा, वो फिर मैं कभी मौका मिलेगा तो सुनाऊंगी। लेकिन दादी जी जो अब्दुल कलाम जी को दृष्टि देते थे और ज्ञान के जो वचन बोलते थे, अब्दुल कलाम जी उसको यूं स्वीकार करते थे जैसे बहुत विजडम की बात उन्हें मिल रही है। दादी गुलजार के साथ अब्दुल कलाम जी का संबंध वो और ही निराला था, वो मैं आज नहीं सुनाती हूं, कभी सुनाएंगे कितना निराला उनका संबंध था। राष्ट्रपति भवन में कैसे दादियों को रिसीव करते थे, वो वंडरफुल बातें हैं, वो फिर कभी। फिर उसके साथ साथ जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि दादी दृढ़ संकल्पी थी, आज सवेरे भी हमने कई बातें सुनी, आप जानते हैं 73 का मेला था रामलीला ग्राउंड में, ये स्टोरी कईयों ने सुनी है, लेकिन आज दादी की कमाल बताते हुए, वो ग्राउंड हमारा लास्ट मिनट पर कैंसिल कर दिया गया क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट उस समय के मिस्टर ब्रेजनेव आने वाले थे। रशिया से उन दिनों हमें गेहूं आता था और उसे अन्नदाता माना जाता था। जब हमारे को आया लेटर कि ब्रेजनेव जी का वहां पर रिसेप्शन होगा, आप लोग अपना मेला यहां से शिफ्ट कर लीजिए, दादी जी ने कहा, इतना मेला, इतने भाई बहन, उन दिनों तो हम लेबर भी नहीं रखते थे, अपने हाथों से सारे काम करते थे, इतना सारा ये कैसे होगा। दादी ने कहा योग करो, योग करो, ग्राउंड में योग, पांडव भवन में योग, मुख्य सेंटर्स दिल्ली के वहां योग, और दादी स्वयं बैठते थे। शॉर्ट में आखिर विजय हुई योग की गरिमा की, और हमें अपना वेन्यू चेंज करना नहीं पड़ा। अखबार में आया कि ब्रह्मा कुमारियों के आगे सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने अपना रिसेप्शन लाल किला में कर लिया। दादी योग पर हमको बहुत ध्यान खिंचाते थे, वीआईपीज को मिलने जाते थे तो भी दादी कहती थी योग योग योग। ऐसे ही आपको शायद पता होगा, हमारा डायमंड जुबली थी, डायमंड जुबली थी, और उसमें शंकर दयाल शर्मा जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ दिल्ली, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, ये सब आ रहे थे। इंदिरा गांधी स्टेडियम में ये प्रोग्राम रखा था। लंबी कहानी है, शॉर्ट करते हुए घोड़े पर सवार होकर राष्ट्रपति भवन से दो दिन पहले संदेश वहां का आया, ये कहकर कि राष्ट्रपति जी आपके कार्यक्रम में नहीं आएंगे। हमें तो बहुत जबरदस्त लगा ये समाचार कि इतनी सारी तैयारी, विदेशी आए हैं, दादियां आ चुकी हैं, सब तैयारियां हैं, क्यों नहीं आएंगे। एक दिन खूब भाग दौड़ की लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसका कारण था, सुना देती हूं, जो व्यक्ति था मैनेजर उस समय, उसने कंप्लेन कर दी थी, उसे चाहिए था पैसा जो हम लोगों ने नहीं दिया था। उसने कंप्लेन कर दी कि ये हॉल प्रेजेंट के आने उपयुक्त नहीं है। फरवरी का महीना था, दिल्ली में कड़ी ठंड थी, किसी ने कहा दादी प्रेजेंट नहीं आता कोई बात नहीं, अपनी पब्लिसिटी तो हो गई है। आप जानते हैं दादी ने क्या कहा, दादी ने कहा नहीं, पब्लिसिटी नहीं, प्रेसिडेंट को आना चाहिए। और दादी ने, हम लोग नीचे ऑफिस में बैठ के काम कर रहे थे, टेलीफोन्स कर रहे थे, और दादी ऊपर सब बहनों को बिठा करके योग करा रही थी। रात के 10 बजे सेक्रेटरी ने कहा मैं आपको सवेरे बताऊंगा। हमने कहा नहीं, हमारे लिए तो सारी रात बहुत लंबी है भैया, अभी बता दोगे तो अच्छा है। लंबी कहानी मैं बिल्कुल शॉर्ट कर रही हूं। उसमें दादी का योग सब बहनों के साथ, और दादी ने योग के माध्यम से असंभव को संभव करके दिखाया। जैसे ही हम ऊपर आते हैं अपने कमरे में, घंटी बजती है, सेक्रेटरी लाइन पर है और कहता है प्रेसिडेंट कल सवेरे आपके प्रोग्राम में आएंगे, और प्रेसिडेंट आए। तो योग का जो दादी ने महत्व रखा, मैं समझती हूं वो एक साधन हम सबको अपनाना चाहिए। जो भी हमारी समस्याएं हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी विघ्न आते हैं, अगर हम योग के माध्यम से, जैसे दादी करते थे, योग के माध्यम से अगर हम उन्हें जीतेंगे तो हमें मेहनत कम और सफलता अधिक मिलेगी। दादी हमेशा कहते थे कि स्टैंप निकली, आप में से कितनों को पता है बाबा की स्टैंप निकली थी? प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैंप निकाली, कितनों को पता है? अरे बहुत थोड़ों को। आप देखना यहां कहीं चित्र लगा होगा, बाबा की स्टैंप, जो बाबा कहते ना मुरली में स्टैंप निकालो, वो स्टैंप निकली थी। उस समय भी विघ्न आया था, लेकिन वो भी दादी जी के निर्देशन से और दादी जी के योग की शक्ति से वो भी साकार हुआ। प्रेसिडेंट हाउस से बाबा की स्टैंप का उद्घाटन हुआ था, प्रेसिडेंट हाउस से, राष्ट्रपति भवन से। ये भी एक विशेष बात थी। तो दादी की जो वीआईपीज के साथ मुलाकात होती थी, वाजपेयी जी जब आए, वाजपेयी जी आप जानते हैं उस समय भारत के राष्ट्रपति नहीं थे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, परंतु जब दादी से मिले, यहां का सारा उन्होंने वातावरण देखा और एक महिला इतना सारा चला रही है, तो उनकी आंखें खुली, कान खुले और उन्होंने कहा आपको जब आवश्यकता होगी मैं आपका साथी बनूंगा। और वे बने महामंडलेश्वर स्वामी, मैं समझती वेदांतानंद जी थे, जो बिल्कुल कट्टर ऑपोजिशन में थे, कट्टर ऑपोजिशन में दादी ने प्रेम से निमंत्रण दिया था। सब महामंडलेश्वर हरिद्वार ऋषिकेश से आए थे, मंच इतना सुंदर सुसज्जित था और दादी ने इतनी निर्माणता से एक एक महामंडलेश्वर को इतना सम्मान दिया था, उस सम्मान के आगे सब महामंडलेश्वर झुक गए। वेदांतानंद जी ने सभा से कहा खड़े होकर, दादी मैंने आपके लिए इतना सब कुछ ऑपोजिशन में किया। वो टोली नहीं लेते थे, बड़े दीदी मिले एक बार प्लेटफॉर्म पर तो सेब लेकर के उनको दिलाने की कोशिश की, उधर मुंह करके तब उन्होंने लिया, बहुत अपोज करते थे, परंतु जब दादी के सम्मुख आए ओम शांति भवन में और जब उन्होंने सारा कुछ देखा तो कहा दादी और इतना विशाल कार्य कर रही है, कितनी जबरदस्त सेना तैयार की है। मीठे भाइयों और बहनों, इतने हजारों की सभा में चैलेंज करते हुए पवित्रता के व्रत की धारणा के लिए कहना, ये मासी का घर नहीं है, ये दादी जी कराते थे। दादी की ये शक्ति थी रूहानियत की जिसने इसे संभव कराया। एक मिनट में दादी भाई बहनों से मिलती, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई ऑफिसर्स हो, दादी उनसे ऐसे मिलती थी जैसे छोटे बच्चे की तरह मिलते हैं, और उनसे कहती थी बोलो नॉन वेजिटेरियन छोड़ोगे, बोलो स्मोकिंग ड्रिंकिंग छोड़ोगे, वो बच्चे की तरह हाथ खड़ा कर देते जी दादी, और वो संभव करके दिखाते थे। दादी के सामने आते थे, दादी जब से आपने कहा हमने छोड़ दिया, ये कार्य वही कर सकता है जिसके अंदर इतनी आध्यात्मिक शक्ति है। लास्ट सुनाकर वेदांता जी का सुना रही थी, वेदांतानंद जी ने तब ये कहा कि दादी आपने इतना विशाल ये किया, हम तो नतमस्तक हो गए। दादी क्या आप मुझे अपना भाई बनाएंगी? और हमारी मीठी दादी ममतामयी मां वरिष्ठ बहन के रूप से दादी ने उसी समय राखी मंगवाई और उन्हें बांधी। उनके नैन गीले हो गए। दादी मेरे सारे अखाड़े आपके साथ हैं और सदा साथ रहेंगे, ऐसा कहकर वे यहां से गए। इस प्रकार प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबको कितना नाज होता है, कितना नाज है। दादी खड़े हो जाते थे तो लगता था सच में प्रकाश स्तंभ स्वयं खड़ा है। इतनी लाइट माइट, इतने वाइब्रेशंस जो दादी के पांव फूलते, सबको एक मुष्ट करके रखते थे, प्रेम और शक्ति की लहर फैला देते थे। ऐसी दादी को हम सदा जागृत अपने साथ तब रख सकते हैं जब दादी की बताई हुई बातों को हम अपने जीवन में अपना कर रखेंगे। बोलो हां जी, हाँ? अपनाएंगे ना दादी की बातें। दादी की बातें सिर्फ सुनना और सुनाना नहीं है, जीवन में अपनाना है। ओम शांति।